ये शब्द सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है वो यही कि क्या होती है कहानी, वही जो हम बचपन से सुनते आते हैं, या फिर वो जो लोगों के मुंह से बयां होते होते कहानी बन जाती है, किसी ने कुछ देखा वो घटना बन गई, और वो घटना ही ऐसे लोगों के जुबान पे आते आते कहानी बन गई। बचपन में कहानियों का नाम लेते ही हमें सबसे पहले दिमाग में यही आता था कि दादी और नानी, या फिर घर के बड़े, जब रात को सोने का वक्त हो या फिर बाहर तेज बारिश हो, उनको घेर के बैठ कर हम जो कहानियां सुनते थे उन्हीं की याद आ जाती है। परियों की कहानी, राजकुमार राजकुमारी की कहानी, और ऐसे काफी सारी कहानियां जिनको सुनते ही मन करता था कि और सुन और एंजॉय कर। लेकिन मैं थोड़ी अलग थी, मेरी नानी मेरी दादी दोनों ने जो जो कहानी सुनाई उनमें से सबसे ज्यादा मेरी नानी मेरी फेवरेट थी, क्योंकि उनके पास बहुत टाइप के स्टोरीज सुनने को मिले। उनमें से बहुत ज्यादा मुझे जो पसंद था वो था हॉरर स्टोरीज। जी नहीं, आज मैं जो हॉरर स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ वो ना तो मुझे अपनी नानी से सुनी और ना ही मैंने किसी और से सुनी, मतलब अपने घर वालों से। ये कहानी वो कहानी है जिन्हें बयां करना उस इंसान के लिए भी एक तकलीफ बन जाती है जिन्होंने खुद उसे महसूस किया हो। सच तो ये है कि कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता। हो सकता है आज के जमाने में भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन अभी भी हमारी दुनिया में ऐसे कई सारे रहस्य हैं जिनका खुलासा करना करीब नामुमकिन है। ऐसी ही एक कहानी है आज मेरी फ्रेंड दिव्या की, दिव्या दत्ता, जो मेरे साथ क्लास 12 तक बायोसाइंस लेकर मेरे ही स्कूल में पढ़ती थी। हम दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, मगर वो होता है ना, वक्त के साथ साथ दोस्ती खत्म नहीं होती, लेकिन वक्त और हालात ऐसे हो जाते हैं कि हमें अलग हो जाना पड़ता है। हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा हुआ। दिव्या 12th के बाद डॉक्टरी में पढ़ने के लिए चली गई और मैं बायोसाइंस छोड़कर सीधी आ गई आर्ट्स में, इंग्लिश लिटरेचर लेकर पढ़ाई की, और आखिर में अब मैं एक टीचर हूँ। जबकि बात मैं कर रही हूँ वो कुछ साल पहले की है। मैंने दोस्तों से सुना था कि दिव्या को डॉक्टरी पास होने के बाद किसी गांव में जाना पड़ा इंटर्नशिप के लिए, बस यही तक सुना था। आजकल होता है ना सोशल मीडिया, वहां से खबर मिल जाती है। लेकिन उसके बाद जो कहानी मेरे सामने आई वो उन सब से हटकर थी। शायद जिससे मेरे होश उड़ा दिए थे। मैं करीब 3 साल पहले अंकल से, एक यानी कि दिव्या के पापा से, मार्केट में मिली। लेकिन अंकल काफी बदल चुके थे, उम्र की वजह से नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके दिल में कुछ है जो मुझे कह नहीं पाए। हालचाल तो मैंने पूछ लिया, लेकिन मैंने दिव्या के बारे में पूछते ही कुछ अजीब सा बिहेव करने लगे, मानो कि उन्हें कहना ही नहीं कि दिव्या कैसी है। बहुत ज्यादा बोलने पर उन्होंने कहा कि बस दिव्या 2 हफ्ते पहले मेंटल असाइलम से घर वापस आई है। ये सुनने के बाद मैं थोड़ी शॉक्ड थी। मैंने कहा, ये क्या बात है, क्या वो वहां की डॉक्टर है? उन्होंने कहा, नहीं, वहां की डॉक्टर नहीं है, बल्कि वहां वो अपने ट्रीटमेंट के लिए गई थी। 2 साल पहले जब वो इंटर्नशिप के लिए गांव के लिए निकली थी, अभयपुर के लिए, उसके अगले ही सुबह उसे मेंटल असाइलम में भर्ती करना पड़ा। सुनने के बाद मैं थोड़ी चौंकी और मैंने कहा कि मैं आज शाम आपके घर आती हूँ, मुझे दिव्या से मिलना है। पहले तो अंकल थोड़ा कतराए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आ सकती हूँ, शायद इसमें दिव्या को भी अच्छा लगे, उसे भी नॉर्मल जिंदगी में वापस तो आना ही था। लेकिन शाम को जब मैं दिव्या से मिलने गई तो उस दिव्या के साथ मैं अपनी यादों की दिव्या को मिला ही नहीं पाई। इसलिए नहीं कि अब हमारे लुक्स में डिफरेंस हो गए थे, ऐसा नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल काफी कम हो चुका था। उसकी आंखों में मैंने एक डर देखा, शायद वो डर जो अंकल भी मुझे नहीं दिखाना चाहते थे। मैं उसे पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन शायद उसने मुझे बोलना मुनासिब समझा। पता नहीं क्यों उसे लगा कि उसकी कहानी मुझे बोलनी चाहिए। उसने कहा कि उसकी इंटर्नशिप के लिए उसे जिस दिन जाना था, यहां से उस शाम गांव के लिए वो एक प्राइवेट कार में रवाना हुई थी, लेकिन आधे ही रास्ते पे उसकी वो गाड़ी खराब हो गई। पर ड्राइवर तो अच्छा था और उन्होंने मदद के लिए लिफ्ट मांगी, और किस्मत अच्छी थी तो एक बस दिखी जिसमें दिव्या को सीट भी मिल गई। ड्राइवर ने जब कहा कि हाँ, वो भी उसी गांव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अभयपुर, तो दिव्या भी बहुत खुश हुई और उसका कैब ड्राइवर भी। दिव्या ऊपर बस पे चढ़ गई और जाकर एक खाली सीट देखकर बैठ गई। ऐसा नहीं था कि बस बहुत खाली थी, बस में बहुत सारे लोग थे, लेकिन काफी सारे लोग नींद में भी थे, काफी रात तो हो ही चुकी थी। दिव्या ने सोचा कम से कम एक बात तो अच्छा हुआ, वरना आज पहुंचना मुश्किल था, और इतनी रात गए इतनी सुनसान सड़क पर रहना भी काफी डरावना साबित हो सकता है। इसी बात से वो सोच ही रही थी, तभी उसने नोटिस किया उसके पास जो आदमी बैठे हुए थे वो मुस्कुराकर उसे देख रहे हैं। दिव्या ने बिना सोचे समझे बस अचानक से पूछ लिया, क्या बात है, आप मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो उस आदमी ने पलट कर कहा, बेटा तुम अभयपुर 2 साल के लिए जा रही हो। इस बात पे दिव्या थोड़ी चौंक गई। उसने कहा, आपको कैसे पता कि मैं 2 साल के लिए जा रही हूँ, अभी तो मिले हैं हम लोग। तो जवाब है उस आदमी ने कहा, मुझे तो यहाँ तक पता है कि तुम्हारा नाम दिव्या दत्ता है और तुम वहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर बनने के लिए जा रही हो। एक तरफा से अच्छा ही है, हमारे गांव में बिना इलाज के लोग मर जाते हैं या फिर बहुत सारे हादसे होते हैं जहाँ लोगों का इलाज होना थोड़ा ज़्यादा नुकसान भी होता है। अच्छी बात है कि तुम अब हमारे गांव के लिए कुछ तो करोगी। मेरा नाम अजय कुमार राठौर है, मैं उसी गांव में रहता हूँ और इसीलिए मुझे खबर तो पहले से ही पता चल जाती है कि कौन कब आने वाला है और किस लिए आने वाला है, इसलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। दिव्या की जान में जान आई, वो अब सब कुछ समझ पाई कि कैसे इनको और के बारे में सब कुछ पता है। दिव्या ने कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये भी देखकर अच्छा लग रहा है कि मैं जिस गांव पे जा रही हूँ वहाँ के लोग इतने अच्छे दिल के हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे गांव वालों के लिए सोचते हैं। और शायद वहाँ के लोग ऐसे ही हो तो मुझे और आसानी होगी उनकी मदद करने में। दिव्या की बात सुनकर वह आदमी बोल पड़े। उन्होंने कहा, पता नहीं, 10 साल पहले तो सब ऐसे ही थे, खुश मिजाज, हंसमुख, घुल मिलकर रहने वाले, पर अब तो गांव के लोग भी शायद स्वार्थी हो गए हैं और मेरा बेटा भी अब 20 साल का हो गया है, अब तक तो वो मुझे भूल भी गया होगा। भूल गया होगा क्या मतलब? क्या आप 10 साल बाद आज अपने गांव वापस जा रहे हैं? 10 साल बाद अपने बेटे से मिलने वाले? सुनकर वह आदमी बोल पड़ा कि लौटने का किस्मत कहाँ, बस 10 साल से भटक रहे हैं, इसी रास्ते से रोज गांव के लिए निकलते तो हैं लेकिन गांव तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि कोई जरिया ही नहीं है। गांव पहुंचने के 10 मिनट पहले ही तो भूलकर वही उनकी बात उन्होंने रोक दी। दिव्या ने पूछा, रुक क्यों गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं? अजय जी बोले, कुछ नहीं, अब आप उतर जाइए, हम आगे नहीं जा सकते, बस और 5 मिनट के अंदर वो जगह आ जाएगी, जाइए आप। दिव्या परेशान हो गई और गुस्से से चीख कर बोली, दिमाग तो ठीक है ना आपका? तभी कंडक्टर ने भी वहां से आवाज लगाई और बोली, मैडम जी यहीं पर उतर जाइए। बस यही तक नहीं, उसके बाद बस के सभी पैसेंजर्स भी एक साथ एक ही रट लगाए बैठे थे और सब चीखने लगे। दिव्या के दिमाग सुन पड़ गया, कुछ करने या कहने से पहले ही जबरदस्ती उसे सामान के साथ उतार दिया गया। गुस्से में पैदल चलने लगी। बस वालों के हिसाब से और 15 मिनट के बाद गांव आने वाला था, पर बस 5 मिनट होते ही दिव्या को वो बस खाई में गिरी हुई मिली और पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा ये सोचकर वो बहुत डर गई। दिव्या मदद के लिए नीचे खाई की तरफ देखने लगी, वहां बस खून और कतराते हुए जख्मी लोगों की आवाजें सुनाई थी। वो मदद के लिए गांव की तरफ पागलों की तरह भागी, जहां तक उसने सुना था गांव शायद अब बहुत ही करीब था, यही सोचकर वो भागने लगी। भागते भागते वो सच में गांव में पहुंच गई और वहां जाकर उसने जब मदद मांगी कुछ लोगों से, तो सबसे पहले वो लोग हैरान होकर दिव्या की तरफ देखते रहे और फिर उन्होंने जो कहानी बताई उसने दिव्या की होश बढ़ा दी। उन्होंने कहा कि 10 साल पहले 10 बजे गांव के लिए रवाना होती थी और यहाँ पहुंचती थी 11:30 बजे। पर उस दिन उस एक्सीडेंट के बाद वो बस हमेशा के लिए बंद हो गया आना, और अब जो आखिरी बस आती है 8 बजे रवाना होती है और यहाँ पहुंचती है ठीक उसके 1.5 घंटे बाद। तो आज जिस बस पे दिव्या चढ़ी थी वो बस कभी हो ही नहीं सकता, गांव के लिए रवाना हुआ, क्योंकि वो बस तो हो ही नहीं सकती। 10 साल पहले ही वो बस हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। दिव्या नहीं मानी, उसने जबरदस्ती कुछ गांव वालों को अपने साथ लिया और उस खाई की तरफ दौड़ी दिखाने के लिए और मदद के लिए। लेकिन जब वो वहां पहुंची और खाई की तरफ इशारा करके वो भागी तो वहां उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां उसने देखा कि खाई में एक बस तो है लेकिन वो टूटी हुई और उस पे पड़े हुए निशान बहुत पहले की है, कीड़े मकौड़ों के साथ साथ वहां से कुछ पौधे भी उगाए हैं। देखकर समझ में आ रहा है कि ये बस अभी नहीं, बहुत साल पहले इस खाई पे गिरी हुई है और तब से ऐसे ही पड़ी हुई है। जैसे वो अपने हादसे का बयां करती है, सुनने और देखने के साथ साथ महसूस भी कर चुकी थी। सारी कहानियों को एक जगह लाकर जब उसने दिमाग लगाया कि आखिर उसके साथ क्या हुआ, वो लोग फिर कौन थे, ये पूरे बस में जो पैसेंजर्स थे, वो कंडक्टर थे, वो ड्राइवर थे, सब मरे हुए थे, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, आखिर क्या हुआ उसके साथ। जिस दिव्या को मैं जानती थी उस दिव्या को आत्माओं पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन सब कुछ जब उसने अपने दिमाग से सोचने की कोशिश की तो उसे पता चला कि यही सच है। सच और झूठ का फैसला करने से पहले उस पल वो बेहोश हो गई और उसके बाद उसके दिमाग ने उसके दिल का साथ छोड़ दिया। इसी वजह से 2 साल मेंटल असाइलम में रही। वहां पे भी शायद उसको बहुत वक्त लगा उस बात को मानने में कि उस रात उसके साथ क्या हुआ था। कहानी बयां करते करते भी मैंने उसकी आंखों में वही डर देखा, वही खौफ देखी। उसने मुझे बस एक ही बात पूछी, जो भी मैंने तुझे बताई क्या तू बता सकती है वो सब मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आत्माएं होती है, इतना सारा सब कुछ मेरे साथ हुआ, एक पूरी बस, उसके सारे पैसेंजर्स, कंडक्टर, यहाँ तक कि कैब ड्राइवर को भी वो बस दिखी थी, वो बस में मैं चढ़ी हूँ, आधे रास्ते की जर्नी उस बस में चढ़ के कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो बता सकती है ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे पास ना तब जवाब था उसके सवालों का ना आज है। कुछ कहानियां हमेशा कहानियां नहीं रहती, सवाल बनकर रह जाती है। अच्छा, सवाल का जवाब शायद देना मुश्किल है। मैं हूँ आपकी विदिशा और यही मेरी हॉरर स्टोरी आपके लिए अब से YouTube चैनल पे। मुझे और सुनने के लिए और नई नई कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करें और ये कहानी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, और कुछ सुझाव हो या फिर आपके पास भी कुछ कहानियाँ हो जो आप मेरे जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कहानी बोलने का अंदाज़ कैसे लगा।